بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤں، صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے۔ آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان لانے والوں، بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں، اور ٹوہ میں مت رہو، اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی، اور ایشور سے ڈرتے رہو، نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے۔ ہے لوگو، ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا، اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। दोस्तों, आज मंगलवार है, शरीवर माह की पहली, मुहर्रम की 25 और अगस्त की 23 तारीख। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम की शहादत के अवसर पर हम आपकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत आप हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम की शहादत पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी उससे। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अभी आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरानी मंत्रिमंडल इमाम खुमैनी के मजार पर उपस्थित हुआ। विदेश मंत्री अफ्रीकी देशों की यात्रा पर माली पहुंचे। कश्मीर में युवा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और अब आप विस्तार से अख्तर अब्बास से समाचार सुनिए। इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति आज अपने मंत्रिमंडल के साथ इस्लामी गणतंत्र ईरान के संस्थापक के मजार पर उपस्थित हुए और उनकी उमंगों पर प्रतिबद्ध रहने का वचन दिया। राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी सरकार सप्ताह के अवसर पर मंगलवार की सुबह इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर उपस्थित हुए। इस मौके पर उन्होंने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह जनता की सेवा को ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त करने का एक साधन समझते थे और वो जनता के लिए दिलो जान से उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को मानते थे। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम इमाम खुमैनी की उमंगों पर प्रतिबद्ध रहने का वचन देने के लिए यहां आए हैं, ताकि सारी सेवाएं अल्लाह के लिए हों, और हमारा विश्वास है कि आप जहां कहीं भी जनता पर भरोसा करेंगे, आप सफल होंगे। सईद इब्राहिम रईसी ने कहा कि पवित्र प्रतिरक्षा की सफलता की वजह इमाम खुमैनी का जनता पर विश्वास ही था, और हमें इस तत्व को अपनी प्राथमिकताओं में रखना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री एक राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधिमंडल के साथ अफ्रीकी देश माली की राजधानी बामाको पहुंचे, जहां इस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला ने उनका स्वागत किया। माली के विदेश मंत्री ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की बामाको यात्रा पर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि यात्रा इस बात की सूचक है इस्लामी गणतंत्र ईरान माली के साथ समस्त क्षेत्रों में संबंधों को विस्तृत करना चाहता है। विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने बल देकर कहा कि ईरानी सरकार माली के साथ समस्त, विशेषकर आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्रों में संबंधों को विस्तार की इच्छुक है। IRGC के सीनियर कमांडर का कहना है कि ईरान ने सारी रुकावटों के बावजूद रक्षा क्षेत्र में जो विकास किया है वो विदेशियों के लिए हैरान करने वाला है। IRGC की वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने कहा कि हम रक्षा क्षेत्र में इस समय अतीत की तुलना में ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और अब हम मिसाइल और ड्रोन निर्यात करने के चरण में पहुंच चुके हैं। جنرل حاجی زادے نے پوتر نگر مشہد میں فردوسی وشو ودیالیہ کے پروفیسروں چھاتر و چھاتراؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ایشور کی کرپا سے آج دن رات کے پریاسوں کی بدولت میزائل اور ڈرون سہت وبھن کھیتروں میں ہمارے پاس بھرپور شمتائیں اور آوشک رکشا اپکرن و سنسادھن موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دشمن بھی ہماری رکشک شکتی کو سویکار کرتے ہیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں ٹیکنالوجی کی درشٹی سے ایران کے سینی ادیوگ کی شکتی کی سراہنا کرتی ہیں۔ انترکش کھیتر میں دھیان یوگی اپار اور سفلتاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے حاجی زادہ نے کہا کہ ایران انترکش کھیتر میں تیزی سے پرگتی کر رہا ہے۔ انہوں نے اس اوسر پر شہید قاسم سلیمانی کی وشیشتاؤں کا بھی الیکھ کیا اور کہا کہ یہ پرتیرودھ کے مار کے شہید تھے اور جہاد پر پوری طرح ایمان رکھتے تھے۔ یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ سیریا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے ایک انیہ رکشک شہید ہو گئے۔ اس نے کی رپورٹ کے انوسار سیریا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے رکشک جنرل ابو الفضل علی خانی کی شہیدوں بھی شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ جنرل ابو الفضل علی خانی کا سمبند آئی آر جی سی کی تھل سینا سے تھا اور وہ امیر المومنین یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ان فیکٹری کالج کے ادھیکاریوں میں شمار ہوتے ہیں اور وہ سیریا میں سینے صلاح کار بھی تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے رکشک جنرل ابو الفضل علی خانی سیریا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی رکشا کرتے ہوئے شہید ہوئے اور اپنے شہید ساتھیوں سے جا ملے۔ اس خبر کا بیورہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ عراق کے سواستھ منترالے نے اعلان کیا ہے کہ کربلا میں قطارہ نامک پوتر دھارمک استھل پر بھوسخلن ہو جانے سے 7 ویکتی ہتات اور 6 انیہ گھائل ہو گئے۔ عراقی سواستھ منترالے نے ایک وگیپتی جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ دیش کے دکشن میں استھت پوتر نگر کربلا میں قطارے امام علی نامک دھارمک استھل میں بھوسخلن ہو گیا جس کی وجہ سے 7 ویکتی ہتات اور 6 انیہ گھائل ہو گئے۔ کافی نمی ہونے کی وجہ سے دو راتری پورو قطار امام علی نامک دھارمک استھل پر مٹی کا کافی بڑا ڈھیر گر گیا تھا۔ یہ دھارمک استھل ایک گھاٹی میں استھت ہے اور اس کے چاروں اور مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں۔ قطارے یا چشمہ امام علی کے نام سے اس دھارمک استھل کو جانا جاتا ہے۔ یہ پوتر نگر کربلا کے دکشن پشچم میں ہے اور اسی طرح اینومتر کی اور جانے والے راستے کے اتر میں استھت ہے۔ سیریا کی سینا نے پوروتری سیریا کے پرانت حسکا میں استھت قامشلی شہر میں آتنکوادی امریکی سینکوں کی گھسپیٹھ کو روک دیا ہے۔ سیریا کی سرکاری سماچار ایجنسی سانا کی رپورٹ کے انوسار سیریا کی سینا نے قامشلی شہر کے آس پاس استھت گرامیڑ کھیتر سالہیا میں آتنکوادی امریکی سینکوں اور اسی طرح سیرین ڈیموکریٹک فورس کی آتنکیوں کے کارواں کو روک دیا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ آتنکوادیوں کے سینے کارواں میں 6 گاڑیاں شامل تھیں۔ امریکی سینک اور ان سے جڑے آتنکی تتو ایک سمے سے اتری اور پوروی سیریا میں غیر قانونی طریقے سے موجود ہیں اور سیریا کا تیل لوٹنے کے ساتھ ہی کھیتر کے نواسیوں اور وہاں تعینات سیریائی سینکوں اور سرکشا بلوں کے ورودھ کاروائیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد کے گوشا محل ودھان سبھا کھیتر سے بھارتی جنتا پارٹی کے ودھائک ٹی راجا سنگھ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپمان جنک ٹپڑی کیے جانے کا آروپ ہے۔ سوموار دیر رات حیدرآباد کے پرانے شہر علاقے کے کئی پولیس تھانوں کے باہر بڑی سنکھیا میں اکترت ہو کر لوگوں نے یوٹیوب پر ساجھا کیے گئے ایک ویڈیو میں ان کی ٹپڑی کے لیے گرفتاری کی مانگ کرتے ہوئے ویرودھ درج کرایا تھا۔ پردرشنکاریوں نے بشیر باغ میں شہر پولیس آیوکت کے کاریالے کے باہر سڑک پر جام لگا دیا اور پولیس اپایوکت کے کاریالے میں گھس گئے۔ پردرشنوں کو دیکھتے ہوئے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی پی سائی چیتنیہ نے پردرشنکاریوں سے سمرتھن مانگا اور ان سے قانون میں وشواس رکھنے کا آگرہ کیا۔ بھاجپا ودھائک نے اسٹینڈ اپ کامیڈین منور فاروقی کی آلوچنا کرتے ہوئے سوموار رات کو ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں وہ کتھت بھاجپا کی پورو پروکتا انوپور شرما کی طرح ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ٹپڑی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹی راجا سنگھ اپنے کٹر ہندوتو وادی وچاروں کے لیے جانے جاتے ہیں۔ بھارت نیتت کشمیر میں ایک ویکتی کی پٹائی کا ویڈیو جاری ہونے کے بعد کافی ہنگامہ مچ گیا۔ پراپت رپورٹ کے انوسار سینا کے چنار کور اکائی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اس ویڈیو کلپ کی ستیتا کی جانچ کر رہی ہے۔ اس کلپ میں کتھت طور پر کچھ سینک شری نگر کے نوگام علاقے میں ایک ویکتی کی پٹائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سینا کے ایک ادھیکاری نے ٹویٹ میں کہا کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے جس میں سینکوں اور لوگوں کے بیچ جھگڑا دکھائی دیتا ہے۔ چنار کور ویڈیو کی ستیتا کی جانچ کر رہی ہے۔ پولیس نے کہا کہ کتھت گھٹنا سوموار کو ہوئی اور اس سمبندھ میں معاملہ درج کرایا گیا ہے۔ بھارت نیتی جموں کشمیر کے پورو مکھیہ منتری فاروق عبداللہ ایک بار پھر ای ڈی کاریالے میں حاضر ہوئے۔ پراپت رپورٹ کے انوسار آج ایک بار پھر شری نگر کے راج باغ استھت پروتن نردیشالے کے دفتر پہنچے، جہاں ان سے کتھت روپ سے 43 کروڑ روپے کی ہیرا پھیری کے آروپ میں پوچھ تاچھ ہو سکتی ہے۔ بھرشٹاچار کا یہ معاملہ جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن میں ہے جس سمے وہ ادھیکش ہوا کرتے تھے۔ فاروق عبداللہ سے اس سے پہلے بھی شری نگر میں ای ڈی کے ادھیکاریوں دوارا پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ بھاجپا بنیادی سوالوں سے بس معاف کیجیے گا سماجوادی پارٹی ادھیکش اکھلیش سنگھ یادو نے وپکش معاف کیجیے گا سماجوادی پارٹی ادھیکش اکھلیش یادو نے وپکشی نیتاؤں کی گرفتاری کو بھارتی جنتا پارٹی کے آگامی لوک سبھا چناؤ کی تیاریوں کا حصہ قرار دیا اور آروپ لگایا کہ بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی جیسے بنیادی سوالوں کا جواب دینے سے بچنے کے مقصد سے جنتا کا دھیان ہٹانے کے لیے وپکشی نیتاؤں کو چنہت کر جھوٹے مقدموں میں جیل بھیجا جا رہا ہے۔ یادو نے ورش 1998 میں بلبا اور چکا جام کے معاملے میں گت جولائی جے بھیجے گئے پھول پور پوئی کھیتر سے سپا ودھائک رما کانت یادو سے کاراگار میں ملاقات کے بعد سنواداتاؤں سے بات چیت میں آروپ لگائے کہ رما کانت کو 20 سال سے زیادہ پرانے معاملے میں جان بوجھ کر سرکار کے اشارے پر جیل بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگاتار ان کے خلاف جھوٹے مقدمے سرکار کے اشارے پر درج کیے جا رہے ہیں اور سرکار چاہتی ہے کہ وہ جیل سے نہیں نکل پائیں۔ بھارتی جنتا پارٹی نے کرناٹک کے پورو مکھیہ منتری و کانگریس کے ورشٹھ نیتا سدرامیا پر ایک بار پھر سے ہندوؤں کی آستھا کا اپمان کرنے کا آروپ لگایا ہے۔ بھاجپا کرناٹک کے پرمکھ نلین کمار کٹیل نے آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ سدرامیا نے ایک بار پھر ہندوؤں کی آستھا کا اپمان کیا ہے کیونکہ وہ مانس کھانے کے بعد مندر گئے تھے۔ اس سے پہلے سدرامیا نے کہا تھا کہ اگر میں لنچ میں مانس کھاؤں اور شام کو مندر جاؤں تو اس میں غلط کیا ہے۔ جموں کشمیر میں بھوکمپ کے تیز جھٹکے آئے ہیں۔ اس کا کیندر کٹرا علاقے سے 61 کلومیٹر پور میں 10 کلومیٹر کی گہرائی پر تھا۔ ریکٹر اسکیل پر بھوکمپ کی تیورتا 3.9 درج کی گئی۔ سوڈان کے ادھیکاریوں نے اعلان کیا ہے کہ بھاری ورشا اور باڑھ آ جانے کے کارن اس دیش میں 83 لوگ مارے گئے ہیں۔ سماچار ایجنسی اسنا ایرنا کی رپورٹ کے انوسار سوڈانی ادھیکاریوں نے گھوشنا کی ہے کہ گت جون سے اب تک باڑھ میں 83 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ اس رپورٹ کے آدھار پر بھاری ورشا اور اس کے نتیجے میں آنے والی باڑھ کے کارن 18,235 آواسی مکان پوری طرح دھوست ہو گئے ہیں اور 25,658 آواسی مکانوں کو آنشک روپ سے کھتی پہنچی ہے۔ سوڈانی منتریوں کے ایک پرتنیدھی منڈل نے رویوار کو باڑھ کے کارن اس دیش کے 6 پرانتوں میں آپات استھتی کی گھوشنا کر دی تھی۔ راشٹر سنگھ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ باڑھ کے کارن 25,000 لوگوں کو کھتی اٹھانی پڑی ہے اور ان میں سے 2,500 بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں اسی کے ساتھ سماچار سماپت ہوتا ہے، ہمیں انمتی دیں۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز۔
دوستوں، راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم لے کر اپستھت ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ حزب اللہ کی استھاپنا کی 40ویں سالگرہ، ودیش منتری کی افریقہ کی یاترا اور دلی میں 6ٹی انتراشٹریہ روبوٹک پرتسپردھا۔ دوستوں، یہ ہے ہماری آج کی چرچا کے وشے، جن پر وستار سے بات کریں گے۔ امیر عبداللہیان کہتے ہیں کہ مالی کے ساتھ ایران ہر شیتر میں سمبندھ وستار کرنے کا اچھک ہے۔ ایک سمیکشا لے کر اپستھت ہے محمد مہدی۔
ایران کے ودیش منتری ایک راجنیتک اور آرتھک پرتنیدھ منڈل کے ساتھ افریقی دیش مالی کی راجدھانی بامکو پہنچ گئے، جہاں اس دیش کے ودیش منتری عبداللہ نے ان کا سواگت کیا۔ مالی کے ودیش منتری نے ایرانی ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان کی بامکو یاترا پر پرسنتا ظاہر کی اور کہا کہ یہ یاترا اس بات کی سوچک ہے، اسلامی گنتنتر ایران مالی کے ساتھ سمست چھیتروں میں سمبندھوں کو وسترت کرنا چاہتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے بل دے کر کہا کہ ایرانی سرکار مالی کے ساتھ سمست وشیش کر آرتھک اور ویاپارک چھیتروں میں سمبندھوں کے وستار کی اچھک ہے۔ سماچار ایجنسی فارس کی رپورٹ کے انوسار ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان اپنے مالی سمکش کے نمنترن پر بامکو کی یاترا پر گئے ہیں، اور وہ اپنے مالی سمکش کے علاوہ اس دیش کے راشٹرپتی سے بھی ملاقات اور وچار ومرش کریں گے۔ ودیش منتری مالی کے بعد تنزانیہ جائیں گے۔ ایران کی ایک نیتی سمست دیشوں وشیش کر پڑوسی دیشوں کے ساتھ سمبندھوں میں وستار ہے۔ وہ افریقی دیشوں کے ساتھ سمبندھوں میں وستار کو بھی بہت مہتو دیتا ہے۔ ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان کی مالی یاترا کو اسی پرپیچ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے 22 فروری کو موزمبیک کے راشٹرپتی کے ساتھ ملاقات کی تھی، جس میں دوسرے افریقی دیشوں کے ساتھ سمبندھوں میں وستار ہیتو تہران کی تتپرتا کی گھوشنا کی تھی۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے بل دے کر کہا تھا کہ افریقی دیشوں کے ساتھ اسلامی گنتنتر ایران کے ہمیشہ سے اچھے سمبندھ رہے ہیں۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے بھی مالی روانہ ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ایران کی ودیش نیتی میں وشو کے سمست چھیتر درشٹگت ہیں، پرنتو ایشیا پڑوسیوں اور اسی پرکار افریقہ سہت کچھ دیشوں کے ساتھ سمبندھوں کو پراتھمکتا پراپت ہے۔ ایران دکشن افریقہ کو پیٹرو کیمیکل چیزوں کا نریات کرتا ہے، جو پچھلے سال 25,40,00,000 ڈالر ہو گیا، اور اس میں پچھلے 10 ورشوں کی تلنا میں دھیان یوگیہ وردھی ہو گئی ہے۔ پچھلے ایک سال میں نائجیریا، گھانا، آئیوری کوسٹ، گینیا، تنزانیہ، سینیگل، گینی، کیمرون اور مالی سہت افریقی دیشوں سے پرتنیدھ منڈل ایران کی یاترا پر آ چکے ہیں۔ ایران اور افریقی دیشوں کے مدھیہ موجود کھمتاؤں کے درشگت اس میں ایران کے ساتھ ویاپارک لین دین کا جو اس طرح وہ بہت کم ہے۔ افریقہ مہادیپ کے 54 دیشوں میں سے 50 دیش گٹ نرپیکش آندولن کے سدسیہ ہیں، اور ان میں سے کچھ پر پرتیبندھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی پرکار افریقہ مہادیپ میں 30 اسلامی دیش ہیں، جن کی لگ بھگ آدھی جن سنکھیا مسلمان ہے، اور یہ وشے سانسکرتک درشٹی ایران کے لیے وشیش مہتو رکھتا ہے۔ سارانش یہ کہ افریقہ مہادویپ پراکرتک سروتوں سے سمرد ہے اور آرتھک درشٹی سے ایران کے لیے اچت و بہترین بھاگیدار ہو سکتا ہے۔ راجنیتک درشٹی سے بھی افریقہ مہادویپ چھیتری اور انتراشٹریہ استر پر ایران کے لیے مہتوپورن اور رچناتمک بھومیکا نبھا سکتا ہے۔
لبنان کے پرتیرودھی سنگٹھن حزب اللہ کے گٹھن کو آج 4 دشک پورے ہو رہے ہیں۔ ان 40 ورشوں کے دوران اس نے کن اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا ہے بتا رہے ہیں عظیم زادے، جن کی رپورٹ کو سور دے رہے ہیں ساتھی احمد عباس۔
حزب اللہ لبنان کی استھاپنا کو 40 سال پورے ہونے پر راجدھانی بیروت کے دکشنی زاہیہ نامک علاقے میں
फतह का राज नाम से भव्यशाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया। लिबनानी लड़की ने इस अवसर पर कहा कि हम सैयद हसन नसरुल्लाह से ये कहना चाहते हैं कि हम हिजबुल्लाह और शहीदों के रास्ते पर मजबूती से डटे हैं। इस समारोह को संबोधित करते हुए हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह ने सन 2000 में दक्षिणी लिबनान की इसराइली कब्जे से आजादी और 2006 में 33 दिवसीय युद्ध में इसराइल पर हिजबुल्लाह की विजय को ग्रेटर इसराइल और न्यू मिडिल ईस्ट जैसी साजिशों की नाकामी की वजह बताया। उन्होंने कहा कि 2000 में मिलने वाली सफलता ने ग्रेटर इसराइल की योजना को खत्म कर दिया और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस में नई जान डाल दी और इस भ्रम को भी दूर कर दिया कि इसराइल को शिकस्त नहीं दी जा सकती। 33 दिवसीय युद्ध ने न्यू मिडिल ईस्ट नाम की अमरीकी इसराइली योजना को ध्वस्त कर दिया। सैयद हसन नसरुल्लाह का कहना था कि रेजिस्टेंस की सोच को जन्म देने वाले इमाम खुमैनी थे और इमाम खामेनेई इस मिशन को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ी सफलता के साथ लगातार इस राह पर बढ़ रहे हैं।
यजब अन तवज्जह बिस्मिकुम जमीअन इला क़ाइदिना।
मैं आपकी नुमाइंदगी करते हुए अपने नेता, अपने मर्जे तकलीद और अपने इमाम का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने शुरू से इमाम खुमैनी की जिंदगी में भी हमारा भरपूर साथ दिया। आयतुल्लाह खामेनेई ने हमेशा हिजबुल्लाह पर खास तवज्जो दी। हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। इन 40 वर्षों में 10 साल इमाम खुमैनी के जीवन में और 30 साल इस्लामी इनकलाब के नेता के रूप में जिम्मेदारी संभालने के दौरान उन्होंने कभी भी हमें फरामोश नहीं किया। इसी तरह पासदारान इनकलाब फोर्स में हम अपने दोस्तों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। सैयद हसन नसरुल्लाह ने फिलिस्तीन के भरपूर समर्थन और इसराइल से रिश्ते बहाल करने के रुझान के विरोध पर जोर देते हुए कहा कि हमारी उम्मीद शिरबिल अबू जाहिर और नादिया फौजा जैसे जवानों से है जो ज़ायनी खिलाड़ियों के साथ कोई भी मैच खेलने से इनकार कर देते हैं। हिजबुल्लाह की स्थापना को 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लिबनान के अनेक शहरों में कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलों तक इसी तरह जारी रहेगा। बैरूत से IRIB के लिए हसन अजीमजादे की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं भारत का। ईरान सहित 15 देशों के हजारों छात्रों की उपस्थिति में भारत की राजधानी में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई है। नई दिल्ली से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 6वें अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स चैंपियनशिप मुकाबले का आयोजन हुआ जिसमें ईरान, भारत, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश सहित 15 देशों के लगभग 5,500 स्कूली और विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं ने भाग लिया। 2 दिवसीय इस रोबोटिक्स टेक्नोशियन टूर्नामेंट में जिसमें प्रतिस्पर्धा के 9 सेगमेंट रखे गए थे, ईरानी छात्रों और छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया और क्रिएटिविटी या रचनात्मकता में तीसरा और टीम के रूप में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ईरान के विभिन्न प्रांतों के स्कूली छात्रों और छात्राओं ने रोबोटिक्स अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में काफी उत्साह के साथ भाग लिया। ईरानी टीम के प्रमुख नादिर नौबख्त ने कहा कि ईरानी टीम ने इस मुकाबले के 4 सेगमेंटों में भाग लिया। इस टूर्नामेंट में रोबो सॉकर, रोबो रेस, फास्टेस्ट लाइन फॉलोवर, बोट्स कॉम्बैट, मेज सॉल्वर, ड्रोन रेस और क्रिएटिविटी जैसे सेगमेंट शामिल थे। बांग्लादेश के एक छात्र ने इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अपनी रुचि प्रकट करते हुए कहा,
बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहले भी आ चुके हैं टेक्नोजियन वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में, उस टाइम भी हम फाइनलिस्ट थे, इस बार भी LFR में फास्टेस्ट लाइन फॉलोअर में हम फाइनलिस्ट थे, फाइनल राउंड भी हमने कंप्लीट किया, अब देखते हैं क्या होता है।
इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन करने वाले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की ओर आकर्षित करना है, जिनमें काफी उत्साह पाया जाता है। दिल्ली के शिवनादर स्कूल के एक छात्र ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट से हमें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति और अपनी स्थिति का पता चलता है।
काफी नए ये मौके मिलते हैं लोगों से मिलने का, मतलब बेटर रोबोट्स को देखने का, उनसे सीखने का, और जब बाकियों से आप बात करते हो और उनके रोबोट्स देखते हो तो आपको समझ में आता है कि आपका रोबोट कहाँ पे लैग कर रहा है और आप कैसे उसको बेहतर बना सकते हो।
शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, जिसे लेकर उपस्थित थे हमारे साथी कायम रिजवी। अब प्रस्तुत है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम की शहादत पर विशेष कार्यक्रम।
श्रोतागण, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। इस दुखद अवसर पर आप सबकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। स्वाति और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
सन 61 हजरी कमरी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों की शहादत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने लोगों के मार्गदर्शन का ईश्वरीय दायित्व संभाला और सन 95 हिजरी कमरी में उमवी खलीफा हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने इमाम को जहर देकर शहीद करवा दिया।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आशुर के दिन करबला में मौजूद थे, परंतु बहुत ही अधिक बीमार थे, जिसकी वजह से रण क्षेत्र में न जा सके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इतना शदीद बीमार थे कि दुश्मन यह समझ रहे थे कि इमाम प्राण त्यागने वाले हैं, उन्हें शहीद करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता महान ईश्वर की इच्छा ये थी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिंदा रहें और अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित व लाभान्वित करें।
सन 38 हिजरी कमरी में शाबान महीने की 5 तारीख को पवित्र नगर मदीना में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था। ईरानी राजकुमारी शहरबानो आपकी माता हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के समय में राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ही संवेदनशील थीं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के महान पिता हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने समय के अत्याचारी व धर्म भ्रष्ट शासक यजीद की सरकार के खिलाफ महाआंदोलन किया और अपने 72 निष्ठावान साथियों के साथ करबला में शहीद हो गए और उनके परिजनों को बंदी बना लिया गया, तो समाज में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया, क्योंकि पैगंबर इस्लाम के नाती को शहीद करना और उनके परिजनों को बंदी बना लेना ऐसा अभूतपूर्व अपराध था, जिसे देखकर और जिसके बारे में सुनकर लोग हतप्रभ एवं भयभीत हो गए थे।
इसी प्रकार इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का काल सामाजिक परिवर्तन का काल था, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इन क्षेत्रों से मुसलमान शासकों को बहुत धन संपत्ति आदि मिली थी, जिसके कारण ये शासक ऐश्वर्य व विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने में लीन हो गए थे। इसी मध्य ईश्वरी धर्म इस्लाम की वास्तविक शिक्षाओं को परिवर्तित किया जा रहा था और अमवी सरकार ने बहुत से लोगों को किराए पर रखा था। उन लोगों का काम झूठी हदीसें गढ़कर इस्लाम को परिवर्तित करना और उन्हें लोगों के मध्य प्रचलित करना था। इसका एक अन्य लक्ष्य लोगों को ईश्वरीय धर्म इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाओं से दूर करना था, क्योंकि जब लोग धर्म से दूर हो जाएंगे तो उनसे हर प्रकार का गलत कार्य करा के अपने अवैध हितों की पूर्ति बड़ी सरलता से की जा सकती है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम लोगों के साथ बहुत विनम्र और सुशील व्यवहार करते थे, इस प्रकार से कि कुछ लोग ये सोचते थे कि इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास उपासना के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है और वे सामाजिक एवं सांसारिक कार्यों व मामलों से दूर हैं, जबकि ये वो वातावरण था कि बनी उमैया ने घुटन का वातावरण उत्पन्न कर रखा था जिससे लोग इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाओं से दूर हो गए थे। उस समय की परिस्थितियां इस बात का कारण बनी कि इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की विशुद्ध शिक्षाओं को पुनर्जीवित करने के लिए दूसरी पद्धति अपनाई।
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने आध्यात्मिक एवं इस्लामी उद्देश्यों व आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए नसीहत और दुआ का मार्ग अपनाया। वास्तव में इमाम ने सही आस्थाओं और विचारों को स्थानांतरित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग का चयन किया।
इस प्रकार की दुआ व नसीहत का एक उदाहरण वो दुआ है जिसे इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम प्रायः शुक्रवार को पढ़ा करते थे। मरने के बाद दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर इंसानों से सवाल करेंगे कि तुम्हारा ईश्वर कौन है जिसकी उपासना करते थे, वो पैगंबर कौन है जिसे तुम्हारे पास भेजा गया है, वो धर्म क्या है जिसका तुम अनुसरण करते थे, और वो कौन सी आसमानी किताब है जिसकी तुम तिलावत करते थे, और तुम्हारा इमाम कौन है जिसकी विलायत तुमने स्वीकार की थी। इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ के अंदर एक ईश्वरवाद, नबुवत अर्थात पैगंबरी, इमामत और प्रलय जैसे महत्वपूर्ण विषयों को बयान कर दिया।
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ में जिस इमाम का वर्णन किया गया है यह वही इमाम है जो पैगंबर इस्लाम का उत्तराधिकारी होता है। दूसरे शब्दों में उस पर लोगों के सांसारिक और धार्मिक मामलों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है और उसके अनुसरण व उसके आदेशों का मानना पैगंबर इस्लाम के आदेशों को मानने के समान है। वास्तव में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुआ और नसीहत की रोशनी में इमामत के विषय को बयान किया, लोगों को इस्लामी सरकार एवं समाज के नेतृत्व के मामले से अवगत कराया, और यह वह चीज है जिसके बारे में बनी उमैया की सरकार बात करना व सुनना तक पसंद नहीं करती थी।
अबू हमजा सोमाली नाम के इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के एक बहुत अच्छे व निष्ठावान अनुयायी थे। वे इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के निकटवर्ती लोगों के लिए बयान करते हैं और कहते हैं कि इमाम झूठे आराम से लोगों को दूर रहने की ताकीद करते हैं, क्योंकि झूठा व अर्थहीन आराम दूसरों पर अत्याचार किए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों का ध्यान इस बिंदु की ओर खींचते हैं कि उमवी सरकार अगर लोगों को आराम देती है तो उसका कारण यह है कि वो लोगों का ईमान बर्बाद करना चाहती है, और अगर उन्हें कोई विशिष्टता देती है तो इसकी वजह यह है कि वो अपने अत्याचारी सरकार के प्रति लोगों के विरोध को कम करना चाहती है।
इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नसीहत करते हुए इस प्रकार से फरमाते हैं कि हे मोमिनो, तुम्हें अत्याचारी और दुनिया से प्रेम करने वाले अत्याचारी धोखा न दें जो अपना दिल दुनिया से लगा बैठे हैं। वे उसके प्रेमी हो गए हैं और संसार के क्षणिक आनंदों के पीछे भाग रहे हैं। इसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों को अत्याचार से संघर्ष के मार्ग में मजबूती से बाकी व जमे रहने के लिए पहले के लोगों के अनुभवों को बयान करते हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जान की कसम, आप लोग अतीत की उस बुराई व फितने से सही सलामत बाहर आ गए हैं जो बीत गए हैं, जबकि तुम लोग सदैव पथभ्रष्ट लोगों, धर्म में नई चीज उत्पन्न करने वालों और जमीन में बुराई फैलाने वालों से दूरी करते थे, तो अब भी ईश्वर से सहायता मांगो और ईश्वर तथा इसके प्रतिनिधि के आदेशों का पालन करो।
अबू हमजा सोमाली नाम के प्रसिद्ध दुआ में इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस बात को स्पष्ट शब्दों में बयान करते हैं कि ईश्वर उसके पैगम्बर के बाद किसके आदेशों का पालन करना चाहिए। इमाम अपने चाहने वालों और अनुयायियों के मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न होने से रोकने के लिए फरमाते हैं, ईश्वर ने जिसके अनुसरण को अनिवार्य करार दिया है उसे हर चीज पर प्राथमिकता दो, और कभी भी मामलों में अत्याचारियों के अनुसरण को ईश्वर और उसके प्रतिनिधियों के अनुसरण पर प्राथमिकता न दो। पापी लोगों के साथ उठने बैठने, भ्रष्ट लोगों के साथ सहयोग करने से दूरी करो और उनके फितनों व बुराइयों से बचो। उनसे दूरी करो और जान लो कि जो भी ईश्वरीय प्रतिनिधि का विरोध करेगा और ईश्वर के धर्म के अतिरिक्त किसी और धर्म का पालन करेगा और ईश्वरीय मार्गदर्शन के मुकाबले में अपनी मनमानी करेगा, वो नरक की आग में गिरफ्तार होगा।
दुआ, संघर्ष और प्रचार की इमाम सज्जाद अलैहि सलाम की एक शैली थी। इमाम सज्जाद अलैहि सलाम ने दुआ के परिप्रेक्ष्य में बहुत से इस्लामी ज्ञानों व विषयों को बयान किया और उन सबको सहीफ़े सज्जादिया नाम की किताब में एकत्रित किया गया है। इस किताब को अहले बैत की इंजिल और आले मोहम्मद की तौरात कहा जाता है। इमाम ने दुआ को महान व सर्वसमर्थ ईश्वर का सामीप्य प्राप्त करने का सबसे उत्तम व बेहतर साधन बताया, वह भी उस काल में जब लोग दुनिया के पीछे भाग रहे थे। रोचक बात यह है कि इमाम जगह जगह पर इमामत और अहले बैत की सत्यता को बयान करते थे, जैसा कि हम सहीफ़े सज्जादिया की 46वीं दुआ में पढ़ते हैं, हे ईश्वर, यह खिलाफत तेरे प्रतिनिधियों, तेरे चुने हुए और तेरे अमानतदारों का स्थान है, जिसमें ऊंचे दर्जे हैं जो इनसे विशेष कर दिए गए हैं, परंतु दूसरों ने अवैध ढंग से उस पर कब्जा कर लिया है, यहां तक कि तेरे प्रतिनिधियों से अधिकार छीन लिया गया है और अब वे देख रहे हैं कि तेरे आदेशों को परिवर्तित कर दिया गया है और तेरी किताब कोने में डाल दी गई है और तेरे वाजिबात इधर उधर हो गए हैं और तेरे पैगंबर की परंपरा व शैली को उसकी हाल पर छोड़ दिया गया है।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपनी दुआओं में बार बार पैगम्बर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों पर दुरूद व सलाम को दोहराते हैं और इससे उनका उद्देश्य पैगम्बर इस्लाम के पवित्र परिजनों के स्थान को बयान करना था। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे तो उस समय उनकी उम्र 23 साल थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जिस समय इस्लामी समाज का नेतृत्व संभाला उस समय विदित में समाज इस्लामी था, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। लोग पैगंबर इस्लाम की परंपरा पर अमल नहीं करते थे। लोग दूसरों को न तो अच्छाई का आदेश देते थे और न ही बुराई से रोकते थे। दूसरे शब्दों में लोग खुल्लम खुल्ला बुराई पर अमल करते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की उम्मत में सुधार के उद्देश्य से ही आंदोलन किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने भूखा प्यासा शहीद कर दिया जिनकी वो भलाई चाहते थे और जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके निष्ठावान साथियों व अनुयायियों को शहीद कर दिया और वे स्वयं को मुसलमान भी समझते थे।
इस प्रकार गुमराह समाज में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने लोगों के मार्गदर्शन का ईश्वरीय दायित्व संभाला था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपनी इमामत के काल में दुआओं के माध्यम से लोगों को इस्लाम की मूल शिक्षाओं से अवगत कराया और लोगों को लोक परलोक में मुक्ति व कल्याण का रास्ता दिखाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत के काल में इस्लामी सरकार की बागडोर वलीद बिन अब्दुल मलिक मरवान के हाथ में थी। वह भी अपने से पहले के भ्रष्ट शासकों की भांति सच्चाई के चिराग को अपनी सरकार के लिए खतरा समझता था। अतः उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सन 95 हिजरी कमरी में शहीद करवा दिया।
दोस्तों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के दुखद अवसर पर एक बार फिर आपकी सेवा में हार्दिक संवेदना प्रस्तुत करते हैं और आज के कार्यक्रम का समापन इमाम के एक स्वर्णिम कथन से कर रहे हैं। इमाम फरमाते हैं, मोमिन की 3 अलामतें हैं। एक अलामत यह है कि वो दूसरों को वही चीज़ देता है जिसे अपने लिए पसंद करता है। दूसरी अलामत यह है कि वो उस वक्त तक कदम नहीं उठाता जब तक उसे ये न ज्ञात हो जाए कि वो जो कदम उठा रहा है वो ईश्वरीय मार्ग में है। इसी प्रकार इमाम फरमाते हैं कि मोमिन की 3री अलामत यह है कि वो अपने मोमिन भाई की बुराई की टोह में नहीं रहता।
दोस्तों, अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है कार्यक्रम कुरानी किस्से।
Thank you.
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं स्वाति और सैयद मैसाम का सलाम स्वीकार कीजिए।
हिजाज विशेषकर कुरैश कबीले के बहुत से लोग महान ईश्वर को मानते थे। उन सबका मानना था कि महान ईश्वर ने जमीन और आसमान को पैदा किया है। उन सबका मानना था कि वही वर्षा करता है, वही ब्रह्मांड को चलाने वाला है। उनमें से अधिकांश लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म पर अमल करते थे, हज करते थे, खाने काबा की जियारत करते थे और इसी तरह दूसरे बहुत सारे धार्मिक कार्य अंजाम देते थे।
कुरैश के लोग मेहमानों का आतिथ्य सत्कार करते थे। वे गैर धार्मिक कार्यों, परिवार और सगे संबंधियों से संबंध विच्छेद को पसंद नहीं करते थे। इसी प्रकार वे दूसरों पर अत्याचार नहीं करते थे और जब कोई अपराध करता तो उसे दंडित करते थे। खाने काबा की देखरेख का काम करते थे, यहां तक कि खाने काबा पर जो पर्दा डाला जाता था, खजा नाम का कबीला उसका मालिक बन गया। और इसी प्रकार इस कबीले के लोगों ने हज के बहुत से आदेशों व संस्कारों को बदल दिया।
कुरैश के लोग इसी आस्था के साथ जीवन यापन कर रहे थे कि अम्र बिन लही खजा नाम का व्यक्ति शाम गया और वहां उसने देखा कि कुछ लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। उसने मूर्तियों की पूजा करने वालों से पूछा कि ये क्या है, आप लोग क्यों इनकी पूजा कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में उन लोगों ने कहा कि हम इन मूर्तियों की पूजा करते हैं और इनसे वर्षा करने की मांग करते हैं और दूसरे कार्यों की मदद मांगते हैं। इस पर अम्र बिन लही ने कहा कि क्या हो सकता है कि इन बुतों में से एक बुत को हमें दे दो और उसे हम मक्के ले जाएं और खाने काबा के पास रख दें। इस पर शाम के लोगों ने हुबल नाम की मूर्ति उसे दे दी।
अम्र बिन लही उस मूर्ति को लाकर खाने काबा के पास रख दिया और यह पहला बुत था जिसे खाने काबा के पास रखा गया। इसके बाद अम्र बिन लही ने कुरैश कबीले के लोगों से इस बुत की पूजा करने के लिए कहा। इसके बाद अरब के दूसरे कबीलों ने अपने अपने कबीले का बुत बनाया और उसे खाने काबा के पास रख दिया और हर कबीले के लोग अपने अपने बुतों की पूजा करते थे। यहां तक कि कुछ कबीलों ने वर्षा और तूफान आदि से बचने के लिए अपने बुतों को काबे के अंदर भी रख दिया।
अरब के लोग साल में दो बार खाने काबा की जियारत करने और मूर्तियों की पूजा करने के लिए मक्का जाते थे। यही नहीं, बहुत से लोग मक्के में खाने काबा के पास और उसके अंदर बुत रखने के अलावा अपने अपने घरों में भी बुतों को रखते थे और मक्का जाने से पहले वे अपने बुतों के सामने खड़े होकर उसके सामने सिर झुकाते थे। इसी प्रकार जब वे किसी यात्रा पर जाते या जंग के लिए निकलते थे तो उससे पहले अपने बुतों के सामने सिर झुकाते थे और उनसे जंग में विजयी होने और यात्रा से सही सलामत लौट आने की दुआ करते थे।
दोस्तों, यहाँ हम बहुत ही संक्षेप में एक ऐतिहासिक घटना को बयान कर रहे हैं और वह ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काल में भी लोग बुतों की पूजा करते थे। वे लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते थे। वे लोगों को समूचे ब्रह्मांड के रचयिता की उपासना की ओर आमंत्रित करते थे, परंतु लोग बुतों की पूजा करने से बाज नहीं आ रहे थे। तो एक बार उन्होंने कुल्हाड़ी से सारे बुतों को तोड़ दिया और जो सबसे बड़ा बुत था कुल्हाड़ी उसकी गर्दन में डाल दी। जब लोगों ने देखा कि उनके बूट टूटे हुए हैं तो सबने कहा कि यह हजरत इब्राहिम का काम है। जब सबने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़े बूट से पूछ लो, हो सकता है इसी ने तोड़ा हो। तो इस पर बूतों की पूजा करने वालों ने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है कि बड़ा बूत दूसरे बूतों को तोड़ दे, यह हो ही नहीं सकता।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूतों व मूर्तियों की पूजा करने वालों का ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहे थे कि उन बुतों की पूजा क्यों कर रहे हो जो बेजान है, चल फिर नहीं सकते और वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? जो लोग बुतों की पूजा करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या इन बुतों ने आपको पैदा किया है या आप लोगों ने इन बुतों को बनाया है। दूसरे शब्दों में, खालिक को अपनी मखलूक की उपासना करनी चाहिए या मखलूक को अपने खालिक की उपासना करनी चाहिए। इसका जवाब हर बुद्धिमान इंसान जानता है, यानी रचना को अपने रचयिता की उपासना करनी चाहिए, न कि रचनाकार अपनी रचना की उपासना करे।
शाम से हुबल नाम का जो पहला बुत अरब लाया गया था वह लाल अकीका और इंसान की शक्ल का था। उसका दाहिना हाथ टूटा हुआ था। कुरैश कबीले के लोगों ने उसका दाहिना हाथ सोने का बना दिया था। इस बुत को कुरैश के लोगों ने काबे के अंदर रख दिया और उससे बहुत दिल लगा रखा था। काबे के अंदर कुरैश कबीले के अलावा दूसरे कबीलों के बुत भी थे। इस प्रकार से कि काबे के अंदर बुतों की संख्या 360 थी। कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि एक साल में 360 होते हैं, उसी हिसाब से काबे के अंदर रखे जाने वाले बुतों की संख्या भी 360 थी। लोग ब्रह्मांड के रचयिता के बजाय अपने हाथों से बनाए गए बुतों की पूजा करने लगे और उन पर चढ़ावा चढ़ाते और उनके लिए कुर्बानी करते थे।
बुतों की पूजा करने वाले बुतों का बहुत सम्मान करते थे, यहाँ तक कि अगर कोई उनका अपमान कर दे तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती थी। यही नहीं, बुतों की पूजा करने वाले अरब अपने घरों में भी बुत रखते थे। वे बुत विभिन्न चीजों के होते थे। अधिकांश बुत जहाँ पत्थर के होते थे, वहीं कुछ बुत लकड़ी, सोने, चांदी, यहाँ तक कि खजूर के भी होते थे, और भूख लगने पर लोग उन बुतों को खा भी जाते थे। उस समय अरब समाज में जिसके पास कीमती बुत होते थे उसे अमीर समझा जाता था। जब पवित्र कुरान के सूरह अंबिया की 98 से लेकर 102 तक की आयतें नाजिल हुईं, तो महान ईश्वर ने इन आयतों में कहा कि बुत और उनकी इबादत करने वाले जहन्नम में जाएंगे और वे हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे।
जब ये आयतें उतरी तो बड़ी तेजी से कुरैश कबीले के लोगों तक पहुंच गई। उन लोगों ने समझा कि कुरान इन आयतों का संबोधक हम ही हैं। इसी प्रकार उन लोगों ने कुरान की इन आयतों को अपने और अपने बुतों का अपमान समझा। उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने कहा कि जन्नत और जहन्नम कहाँ है? कौन जन्नत और जहन्नम को मानता है? अगर जन्नत होगी तो हम जन्नत में जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये मूर्तियां हैं, और अगर जहन्नम होगी तो हम उसमें नहीं जाएंगे। इसी प्रकार वे कहते थे कि यह कैसे संभव है कि हम इतने मशहूर हैं और हमारे पास इतनी संपत्ति है और हम नरक में जाएंगे? नरक निर्धनों के लिए है। यह मोहम्मद जो हमारे बूतों को बुरा भला कहते हैं, यह सही नहीं है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
काफिर और मुशरिक ये समझते थे कि शोहरत व प्रसिद्धि और इसी प्रकार धन दौलत उन्हें नरक में जाने से बचा लेगी, जबकि प्रलय के दिन माल दौलत, शोहरत, हुस्न, नसब का कोई फायदा नहीं होगा। वहां पर केवल इंसान का अमल काम आएगा। वहां किसी प्रकार की दोस्ती व रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। हाँ, प्रलय के दिन बहुत से लोग अपने गलत व बुरे दोस्तों के कारण ही नरक में जाएंगे और उस वक्त कहेंगे कि काश हमने अमुक व्यक्ति से दोस्ती ना की होती। प्रलय के दिन जिसका अच्छा अमल अधिक होगा वो स्वर्ग में जाएगा। जिनके कर्म अच्छे होंगे प्रलय के दिन उनके कर्मपत्र उनके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, और जिनके कर्मपत्र बाएं हाथ में दिए जाएंगे उनका ठिकाना नरक होगा।
बहरहाल काफिर और मुशरिक बूतों की पूजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और पवित्र कुरान की उस आयत पर आपत्ति जताने के लिए काबे के पास एकत्रित थे, जिसमें महान ईश्वर ने कहा था कि बूत और बूतों की पूजा करने वालों का ठिकाना नरक है। काफिर और मुशरिक बहस करने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में अब्दुल्ला बिन जुबरी वहां आ गया और वह बहस करने में बड़ा माहिर था। जब उसने कुरैश कबीले के लोगों को परेशान देखा तो उसने लोगों से पूछा, तुम लोगों को क्या हो गया है? क्यों इतने परेशान हो? सब चुप हो गए। अबू जहल ने जबान खोली और बुलंद आवाज में कहा, मोहम्मद हमारे बूतों को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि उनका ठिकाना जहन्नम है। हे अब्दुल्ला, अब तक तुम कहाँ थे? अब तक तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होती तुम्हारा पता ही नहीं होता। इस पर उसने अबू जहल से कहा कि मोहम्मद से कहो कि हमारे पास आए, उन्हें मैं ऐसा जवाब दूंगा जिसे सुनकर तुम लोग संतुष्ट हो जाओगे और मोहम्मद निरुत्तर हो जाएंगे।
جب یہ بات پیغمبر اسلام تک پہنچی تو انہوں نے عبداللہ کی بات قبول کر لی اور اویلمب کعبے کے پاس پہنچ گئے۔ عبداللہ نے پیغمبر اسلام کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا، ہے محمد، آپ ہمیں اور ہمارے بتوں کو جہنمی سمجھتے ہیں؟ کیا عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ نرک میں جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو یہودی اور عزیر، عیسائی اور عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے، کیول ہم نہیں ہیں کہ ہم اور ہمارے خدا جہنم میں جائیں گے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات سن کر کافر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے انہوں نے نعرہ لگایا۔ یہ وہ موقع تھا جب سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 اور 102 اتری اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، بلکہ ان لوگوں نے اپنی عبادت کرنے سے بیزاری کی تھی، یہ لوگ نرک میں نہیں جائیں گے، واسطو میں تم لوگ اور جس چیز کی تم اپاسنا کرتے ہو وہ جہنم میں جائیں گے، جن کی تم عبادت کرتے ہو اگر یہ واسطو میں خدا ہوتے تو نرک میں نہ جاتے، جبکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ نرک میں رہیں گے۔
تو دوستوں، آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیں۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا اور پرستوت ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایرانی منتری منڈل امام خمینی کے مزار پر اپستھت ہوا، ودیش منتری افریقی دیشوں کی یاترا پر مالی پہنچے، کشمیر میں یوا کی پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایوم پرتکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کرائیے گا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@wsirib.ir۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ تو اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو انومتی دیں، خدا حافظ۔